आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। लोकसभा सीटों के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर केंद्र और गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के बीच स्थिति तनावपूर्ण होती दिख रही है। इस मुद्दे को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेताओं ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शनिवार को एक बड़ी बैठक की, जिसमें चिंता जाहिर की गई कि मौजूदा आधार पर परिसीमन होने से उत्तर भारत के राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे अनुपात में दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें काफी कम हो जाएंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या जनसंख्या नियंत्रण करने और राजस्व में सबसे अधिक योगदान देने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ शब्दों में दक्षिण राज्यों की तरफ से विरोध जताया।
We contribute more to national exchequer and get lesser allocations. For rupees 1 tax paid by Tamil Nadu, it gets back 26 paisa. Likewise, Karnataka 16 paisa, Telangana 42 paisa, Kerala is 49 paisa. But when Bihar pays rupees 1 rupees tax, it gets 6 rupees 6 paisa. Uttar Pradesh gets rupees 2 rupees 3 paisa. Madhya Pradesh gets 1 rupee 73 paisa. We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation.
Shri Reddy ne Bhajpa ko sujhav dete hue chetavni bhi di.
South will not accept population-based delimitation. If BJP does delimitation on population, South India will lose political voice. North will make us secondary citizens. Everyone here agrees we will not accept delimitation based on the population. Because then states like UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan will dominate rest of the country. We cannot accept it at any cost. Public, political parties, and leaders of the South India and Punjab must unite and oppose this move by the BJP.
बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। बैठक के दौरान श्री स्टालिन की अगुवाई में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 सालों तक बढ़ाया जाए। परिसीमन को लेकर अगली बैठक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और अन्य नेताओं ने परिसीमन को लेकर आयोजित बैठक का विरोध करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार को काले झंडे दिखाए। तमिलनाडु भाजपा सह अध्यक्ष तिमिलिसाई सुंदर राजन ने इस बैठक को तमिलनाडु सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश बताया।
On what basis you are conducting this meeting? To hide the corruption charges, to divide the people of the country. So they are conducting the meeting to hide and divide. That's all I can say. So instead of telling it is a delimitation meeting, it can be told as corruption hiding meeting.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त सचिव अरुण कुमार ने परिसीमन चर्चा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरी राय में जो लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि यह उनका राजनीतिक एजेंडा है या वे अपने क्षेत्र के हितों के बारे में ईमानदारी से सोच रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग बुझाने के दौरान करोड़ों रुपए मिलने की घटना ने न्याय तंत्र से संसद और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की आंतरिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय कमेटी को घटना की जांच का काम सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने न्यायाधीश वर्मा को भी कोई काम न देने को कहा है और उनके मोबाइल फोन की जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही न्यायाधीश वर्मा को आग्रह किया है कि वे अपने फोन से पिछले 6 महीने तक के मैसेज और कॉल डिटेल्स को डिलीट न करें। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश वर्मा के घर से 15 करोड़ नकद रुपए मिलने का दिल्ली पुलिस द्वारा सौंपा गया वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया है। 65 सेकंड के इस वीडियो में अधजले नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटना 14 मार्च को घटित हुई थी, लेकिन खुलासा तकरीबन 6 दिन बाद हुआ। 14 मार्च को जब न्यायाधीश वर्मा के बंगले में लगी आग की सूचना पर दिल्ली फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो दमकल कर्मचारियों को बंगले के स्टोर रूम से करीब 15 करोड़ रुपए की अधजली धनराशि बरामद हुई थी। इसी समय दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां पहुंची थी, लेकिन दोनों ने इस बारे में कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी। घटना का खुलासा अधजले नोटों का वीडियो बाहर आने से हुआ। सफाई कर्मचारियों को भी घर के बाहर सड़क पर 500 रुपए के कई अधजले नोटों के टुकड़े मिले। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जब हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे और अभी मिले थे फड़े हुए नोट, छोटे छोटे टुकड़े।
इस मामले में न्यायाधीश वर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि घटना के समय वे घर पर मौजूद नहीं थे और उन्हें किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बहरहाल इस घटना ने न्याय तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है, जिससे न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवाजों को बल मिला है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद 17 मार्च को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में हुई हिंसा का मामला थमने में नहीं आ रहा है। घटना के 5वें दिन शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी।
ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा, और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
उनका यह बयान गठबंधन सहयोगी एनसीपी के मुखिया और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के शुक्रवार को दिए बयान के बाद आया। श्री पवार ने राजधानी मुंबई में इफ्तार की दावत के दौरान कहा था कि जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा, तो वह चाहे कोई भी हो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हिंसा के 5वें दिन 40 साल के इरफान अंसारी की शनिवार दोपहर को इलाज के दौरान मौत हो गई। पेशे से वेल्डर अंसारी सोमवार 17 मार्च को रात करीब 11 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन से इटारसी के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकले थे, जहां वे दंगे की चपेट में आ गए। पिछले 2 साल से हिंसाग्रस्त सुदूर पूर्वी राज्य मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में मणिपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने चूराचांदपुर में मणिपुर की जातीय हिंसा के विस्थापितों से मुलाकात की और राहत शिविरों का दौरा भी किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल बिश्नुपुर के मोइरांग कॉलेज में पहुंचा। न्यायाधीश गवई ने कहा कि हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि विस्थापित लोग पीछे न छूटें। न्यायाधीश गवई ने रविवार को राजधानी इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की 12वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संवैधानिक तरीकों से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब संवाद होता है तो समाधान आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा से वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर कोई शांति बहाली चाहता है, तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।